नमस्कार दोस्तों, सिमरन केसरी स्वागत करती है आपका कहानी दिल से दिल तक में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। बचपन में अगर हमने किसी लेखक की कहानी सुनी है तो वो मुंशी जी की है। उनकी कहानियाँ हमारे दिलों को छू जाती थी। उनकी कहानियों में से आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है लांछन। ये कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की है। ये कहानी एक पति पत्नी की है जिसमें पति अपनी पत्नी पर बिना वजह शक करता है, जिसके कारण वो अपनी पत्नी और बच्चे से हाथ धो बैठता है। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धो कर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला,
माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार।
देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए मुन्नू, फिर इतनी जल्द मांगने लगे।
क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अब अकेला आदमी, घर देखूं कि काम देखूं।
अरे तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते?
हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगी ना?
हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी।
सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिन बात तक भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसे ही दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मगर आपके तलों के बराबरी भी नहीं कर सकती।
चल छूटे, मैं ऐसी कोई खूबसूरत हूँ?
अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात ही नहीं, उनमें ये नमक कहाँ सरकार।
अच्छा, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा?
भला सरकार, 2 रुपए तो दे दें।
अच्छा ये लो और जाओ।
जानता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं।
क्या पूछते हो, पूछो, मगर जल्दी से, मुझे चूल्हा जलाना है।
तो जाए सरकार, फिर कभी कहूंगा।
अरे नहीं नहीं, कहो, क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है।
दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या?
नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है।
तो कोई दोस्त होंगे। सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ।
दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है।
हाँ सरकार, रंडियाँ तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते।
नहीं नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं।
बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करे। अब आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं ना।
इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा,
मुन्नू क्या कह रहा था?
कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, हारी को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं। बातचीत बड़े ढंग से करता है।
तुम्हें तो बातें करने का मर्ज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, बुधने से ना जाने कैसे तुम बातें करती हो।
मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देख कर बोली, आप आजकल दालमंडी की सैर बहुत किया करते हैं।
कौन, मैं?
जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं।
बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था? वही मुन्नू।
मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है।
तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मत भरी आंखों का आशिक हूं। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठा कर ना देखो। आज शारदा कहाँ है?
नीचे खेलने चली गई है।
नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटर बग्घिया दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। अरे आज ही वो अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, तीन लड़के एक साथ दब गए।
ओ माँ, तीन लड़के, बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी?
इसका भी पता नहीं चला, ईश्वर जानता है। तुम्हें ये गजरा बहुत खिल रहा है।
चल बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा,
सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है।
देख ली औरत कैसी है।
सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता है। है क्या कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी।
ये मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं।
अब क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसाने से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। हाँ।
चल छोटे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं?
अब सरकार कुछ न कहलाए, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआएं नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जीना चाहता। हुजूर के चेहरे मोरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी।
चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा?
अरे क्या आप भी
खुशामद नहीं करता सरकार। सच्ची बात कहता हूँ हुजूर, एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसे ही दिल भी। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली, आज बातों बातों में हुजूर की शक्ल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा जैसी सूरत है वैसी सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है।
अच्छा, ये लंबा सा सांवले रंग का जवान है ना?
हाँ हुजूर, वही मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल न गलेगी।
तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए। जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है, कह देना इधर भूल कर भी न ताके।
कह दिया हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यहाँ क्या बातें कर रहा था।
अच्छा सुन, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे।
अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो जी यही चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूँ हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है।
मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले,
मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू का मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात ना मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह ना लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी?
क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी।
थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना।
मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठे सुना करती हूँ।
तो क्या ये दीवार से बातें करता है? देखो नीचे का आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है, इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो?
अरे चिक तो पड़ी हुई है।
चिक के पास खड़ी रहने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है।
अब ये मुझे मालूम नहीं था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं।
हाँ फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो।
अरे तो गुसल खाना कौन साफ करेगा?
खैर आए मगर उससे बातें ना करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देखाए। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं।
इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी?
अम्मा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा।
राजा भैया कौन?
वही तो है जो अभी इधर से गए हैं।
वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है?
हाँ हाँ, वही वही। मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। क्या तू उसके घर गई थी? वही तो गोद में उठा कर ले गए थे।
तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटर आती रहती है।
राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे।
तुम बैठी बैठी क्या करती हो? तो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती?
इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता।
तुम जवाब देने में बहुत तेज हो, ये मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहते कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती?
बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं है।
मुन्नू तो है ही।
मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रो देता है तो क्या कह दूं, मुझसे तो दत्काते नहीं बनता।
खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा। 7 बज गए।
तुम जाओ, देखाओ, मैं न जाऊंगी।
तुम्ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाई हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहें वो कभी ना मानूंगी?
जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है।
9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी दूर गए कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर राजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठा कर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी,
बापूजी देखो वो राजा भैया आ गए हैं। राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं।
राजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है, नहीं तो राजा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से तांगा तेज चलाने के लिए कहा। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर उन्होंने झुंझला कर तांगे को छावनी की ओर ले चलने के लिए कहा। बोला, हम थिएटर नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेंक दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही छेप होगे। लहू का घूंट पीकर रह गए, अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया, क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय ना था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े।
और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पे खड़ी हो होकर राजा को छवि दिखाओ। तुम ना जाने क्या करने पर तुली हो।
ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतनी नीच समझते हो?
नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह ना लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ शोहदा है, या अब भी कुछ शक है?
मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे पर चित अशांत था। वो दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मर्ज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शोहदे उसको देख देख कर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर ना करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े, इनसे पिन कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें कोई दूसरा उपाय ना सूझा। देवी से बोले,
कहो तो ये घर छोड़ दूं।
जैसी तुम्हारी इच्छा।
आखिर तुम्हें कोई उपाय बताओ।
मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं लाख दो लाख शोहदे हो तो क्या, कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है?
कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं।
देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। ये शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांधे लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी,
माजी, माजी, माजी।
देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे तुतकारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा,
सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं, पागलों की तरह इधर उधर मारा फिरता हूं सरकार, किसी भी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा, ये मकान तो बहुत छोटा है।
तुम्हारे ही कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा।
मेरे कारण? मुझे मुझसे कौन सी खता हुई सरकार?
तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है।
अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा मियाद को एक वकील साहब से मिलने जाना था, वो छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था, मेरे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे सोहदा कहते हैं, उसका सब भला आदमी महल्ले भर में नहीं है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 300 रोजे रखता है, अरे घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद है, क्या मजाल की किसी पर बद निगाह हो।
खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है?
इसका माजरा ना पूछिए हुजूर, आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। अब मैंने कहा, वैसे ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर।
राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए। अरे सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ, हैं इसी शहर में ना, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए।
और आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता, फिर चाहे वो अपने घर लाठी क्यों ना हो, फिर पड़ूंगा। महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसे दिया खाते हैं।
अच्छा उस घर में अभी कोई आया कि नहीं?
कई आदमी आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ आप दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया, रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़े बैठे हैं, बिटिया को याद कर करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी?
याद क्यों नहीं आती मुन्नू, मैं आदमी नहीं हूँ। जानवर तक थान छूटने पर दो चार दिन चारा नहीं खाते। अच्छा ये पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होगे।
हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसों की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही है। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। अच्छा तो अब चलूंगा हुजूर, हैं बाबूजी आते होंगे, कहेंगे ये शैतान फिर यहाँ आ पहुंचा।
अरे अभी उनके आने में बड़ी देर है।
ओहो एक बात तो भूल ही जाता, हाँ रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे, बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधी न रही। कहाँ है मिटिया?
अभी तो पाठशाला से नहीं आई है।
मगर इतनी खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया, भेजना ही था तो दो चार आने के खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की ना होगी, कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं है।
क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे, 30-35 रुपए के ही होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है मुझे। हाँ
नहीं इनको लौटा ले जाओ, इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी, मैं सिर्फ एक मेम रख लेती हूँ।
हुजूर रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीते जी ना छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी हैं हुजूर, आप तो जानती हैं, बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं।
सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है क्या करती है, मेम ले ली और सब लेकर क्या करेगी।
मैं तो सब लूंगी, मेम को मोटर पे बैठा कर दौड़ाऊंगी, कुछ सब पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए अम्मा बता दो?
कहीं से नहीं आए हैं, मैंने देखने को मंगवाए थे, मैं से कोई एक ले ले।
मैं सब लूंगी मेरी अम्मा, सब ले लीजिए ना, कौन लाया है अम्मा।
मुन्नू तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो।
कहाँ से लाए मुन्नू बता तो दो।
तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं।
राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे।
अच्छा मुन्नू तुम अब जाओ, राजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजे।
मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी खिलौने रख दो, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि राजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे, भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा ना करना।
हाँ हाँ अम्मा रख दो, नहीं तो बाबूजी तोड़ देंगे। उनसे कभी मत कहना ये राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को भी मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे, कहेंगे लड़की भिकमंगी है सबसे खिलौने मांगती फिरती है। हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर दफ्तर से आ गए, वही चढ़ी हुई थी, आते ही बोले,
वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा, क्या यहाँ भी आया था?
हाँ आया तो था।
और तुमने आने दिया? मैंने मना ना किया था कि उसे कभी अंदर कदम ना रखने देना।
अरे आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती?
उसके साथ वो शोदा भी रहा होगा?
उसके साथ कोई नहीं था।
तुमने आज भी ना कहा होगा यहाँ मत आया था।
अब मुझे तो इतना ख्याल ना रहा, और अब वो यहाँ क्या करने आएगा?
जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो।
मुझसे तुम ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती है? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने कोई मुझे वैश्य समझ लिया है?
मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए।
तुम मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ।
तुम क्यों नहीं मना कर देती?
तुम्हें कहते कि शर्म आती है।
मेरा मना करना व्यर्थ है, मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा।
अच्छा अगर वो आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहतर भी सभी घरों में आया जाया करते हैं।
अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझा देता हूँ।
ये कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं, जो काम वैश्या भी ना करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वो किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मगन हो गए कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की खबर भी उसे ना हुई। श्याम किशोर खिलौने को देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा,
तूने ये खिलौने कहाँ पाए?
शारदा की घिक्की बंद गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी, मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
बोलते क्यों नहीं, तुझे किसने खिलौने दिए? अरे रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहां से पाए?
इस तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोले,
तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो।
देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। ये निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया। जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे, श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था कि इस प्रश्न का क्या मतलब है।
तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो तो तुम्हें इख्तियार है, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखूंगा। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं, मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ही ली, मैंने भी निश्चय कर लिया, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने योग्य ही नहीं हो।
तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उग गया है तो जहर दे दो, जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध ना था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही तुत्कार देती।
जी चाहता है तालों से जुबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा?
क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा ना जाओगे।
मैं झूठ कहता हूँ?
हाँ झूठ कहते हो।
ये खिलौने कहाँ से आए?
देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं, समझ गए इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइड में आए। अरे मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों ना दिए। बात बना कर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए, बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं। कहती रही मत ले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती। हाँ ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती।
इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ।
जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि चार दिन देखते लग जाए।
मुझे इतनी फुर्सत नहीं, खैरियत इसी में है कि ये जो चीजें आई हो लाकर मेरे सामने रख दो। ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा।
तो घर में देख क्यों नहीं लेते?
कह दिया, मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीज लाकर रख दो, नहीं तो इसे दम गला दबाकर मार डालूंगा।
मारना हो तो मार डालो, जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहां से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो चारों खानी चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रख कर बोले,
दबा दू गला, ना दिखलाएगी तो उन चीजों को?
जो अरमान हूँ पूरे कर लो।
खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है?
अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ।
फिर तो उस मेहतर से बातें ना करूं। अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा।
ये कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी नहीं था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वो खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना ना रही। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय? अब वो क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क से उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी भी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लिए दौड़ी। वो क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी, दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन डालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस का लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे? चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं, अब लोथ कौन उठाए? एक आदमी लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लाश पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी,
मेरी बच्ची शारदा।
और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए, उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती, वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर? अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं वो कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे पर अब तक बाबूजी ना लौटे। इतनी देर तक बाहर ना रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख ना था जितना अपनी असमर्थता का था। वो कैसे शव की दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने को तैयार होगा? अगर कोई ना गया तो क्या उसे अकेली जाना पड़ेगा क्या रात भर लाश पड़ी रहेगी? ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वो पछता रही थी कि शाम ही क्यों ना इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे, सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई। पर आह, ये बाबूजी ना थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी, तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वो भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब सोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उसे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबका बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे?
अब तो शायद ही उसका पता लगे।
तो उसको कुछ सजा न होगी?
मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं।
सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाते रहेंगे।
इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती।
कम से कम पुलिस वालों को ये तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं, आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो गया।
अजी, उसने तो मेरा नाटका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी।
बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए, देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोता देख सारा गुस्सा गायब हो गया, खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उसमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा,
तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा?
तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे।
यही मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले।
श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से ना हुआ। बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी और ये उसके आंसू पूछने के लिए कुछ कम ना था। आह अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वो अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना नहीं कर सकती।
क्या देवी और श्याम के बीच वही भरोसा, वही विश्वास कायम रहता है? क्या मुन्नू आगे देवी से मिलने की कोशिश करता है? देवी और श्याम की जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुकती है? ये मैं सुनाऊंगी आपको कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।